ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय रामलोचन भाई जी हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बाप दादा के अति लाडले विशेष रत्न हैं, और जैसे भाई साहब का नाम है रामलोचन, माना जो राम श्री बाबा के नैनों में विराजमान हो, बाबा के नैनों का नूर, ज्ञान योग के प्रतिमूर्ति हैं आप। हमने आपको अनेक बार दादी मीटिंग हॉल में योग कराते हुए देखा है, और जितनी बार भी आपको देखा है तो ऐसे इतनी अच्छी वाइब्रेशन साथ से आती है, और फील होता है कि एकाग्रचित और एक रस स्थिति क्या होती है। और बहुत अच्छा एक उदाहरण आप हमारे सामने है स्थिति के, आपकी ज्ञान योग में गहन रुचि है, अर्थात आप ज्ञान के ऊपर, योग के ऊपर और मनसा सेवा में बहुत सारे आप हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण देते रहते हैं, और आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य करते हैं कि योग की अपनी स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए। और आपके रूहानी व्यक्तित्व में आपका सरल एवं निरहंकारी स्वभाव चार चांद लगा देता है। आपका लौकिक जन्म अयोध्या में यूपी में हुआ था, और अलौकिक जन्म कलकत्ता में 1971 में, और सबसे बड़ी बात कि उसी सन 1971 में ही आप आबू बाबा के घर में समर्पित हो गए। और जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे झाटकू बच्चे चाहिए, तो आप हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान समय आप शांति वन में वीआईपी डाइनिंग एवं वीआईपी किचन की सेवा संभाल रहे हैं, और साथ साथ मधुबन में होने वाले जो भी शिविर हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, और जो योग भट्टियां चलती हैं उसमें भी आप प्रवचन देते हैं, और देश विदेश में भी आप सेवाओं अर्थ जाते रहते हैं, और आपका विशेष जो धार्मिक सम्मेलन होते हैं उनके अंदर आपके प्रवचन रहते हैं। तो आज के टॉपिक स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, इस पर आप अपने अनुभव युक्त विचार देंगे आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ सोमानधारी बच्चे हैं। हम आप सबका लक्ष्य है विजयी बनकर बाप समान बन जाएं। तो जब आत्मा पुरुषार्थ के पथ पर बढ़ती है तो उसको कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये तो निश्चित बात है। जो आगे बढ़ेगा तो साइड सीन अवश्य आएगी। तो ब्राह्मण बनना, पुरुषार्थ का कदम बढ़ाना, माना साइड सीन रूपी परिस्थितियों का आना। लेकिन बाबा कहता परिस्थिति का काम है आना, आपका काम है विजयी बनना। तो परिस्थिति पर विजयी तब बनेंगे जब परिस्थिति से आप पावरफुल होंगे, अर्थात आप आत्मा की स्थिति परिस्थिति से महान होगी, तब परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य बात है अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना। अनुभव सभी आत्माओं को होता है, लेकिन वो अनुभव स्वरूप में बदल जाए, वो अनुभव स्थिति में बदल जाए, उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अनुभवी सभी हैं, सुख के, शांति के, प्यार के, आनंद के, सबके थोड़ा थोड़ा अनुभव सबको है, लेकिन आवश्यकता है स्वरूप बनने की। तो आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति सदा एक रस कैसे रह सकती है? स्थिति श्रेष्ठ भी हो और एक रस रहे, उसके लिए 5 बातों की आवश्यकता है। आप अभ्यास करके देखो, आत्मा की श्रेष्ठते श्रेष्ठ स्थिति है निराकारी स्वरूप में, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति है जब आत्मा परम धाम में बाप के पास बैठी है, और जीव आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति है जब आप देवी देवताओं में लक्ष्मी नारायण के साथ साथ हैं। तो आपको आत्मक स्वरूप की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आपको अनादि रूप और आदि रूप के स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। अनादि रूप अर्थात जब आत्मा परम धाम में बाप के पास, शिव बाप के पास बैठी है, आप बैठ करके देखो कि क्या स्थिति होगी। परम धाम में आत्मा बाप के पास तब बैठेगी जब शरीर नहीं होगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। लेकिन जब शरीर नहीं है तो आत्मा परम धाम में बाप के पास बैठी हुई भी अनुभव कुछ नहीं कर सकती। अनुभव के लिए शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अनुभव करेगी किसी के द्वारा, वो है शरीर। तो इस समय आपके पास शरीर भी है और बाबा ने इस शरीर से डिटैच होने की विधि भी बताई। इस शरीर में होते हुए डेड साइलेंस का अनुभव करो, जैसे आत्मा शरीर छोड़ देती है तो एकदम साइलेंस हो जाती है, निसंकल्प हो जाती है। तो आप परम धाम में टोटल आत्मक स्वरूप में टिके हुए निसंकल्प अवस्था में बाप के पास बैठो। जब आप थोड़ी देर बाप के पास बैठेंगे तब बाप के संग का रंग आत्मा को शिव बाप समान बनाएगा। जैसे शिव बाप सदा श्रेष्ठ है, सदा एक रस है, तो आप आत्मा भी सदा श्रेष्ठ और सदा एक रस रह सकेंगे। लेकिन डेड साइलेंस स्थिति का अनुभव करने के लिए दो बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति और उपराम स्थिति। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति हो और उपराम स्थिति हो, तब आप परम धाम में निसंकल्प अवस्था में बाबा के पास बैठ सकते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात ये मतलब नहीं कि कोई चीज छोड़ देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना सुख के साधन हैं यूज करो, जो भी है सब यूज करो। अगर ब्राह्मण नहीं मौज करेंगे तो कौन मौज करेगा? ब्राह्मणों को तो भगवान मिला है। लेकिन मौज की विधि क्या है, जो यूज करते हुए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। यूज भी करो लेकिन वैराग्य वृत्ति में रहकर। इसका एक उदाहरण रामायण में आता है कि जब राम रावण को मारकर वापस आया, राज सिंहासन पर बैठा, तो राम ने सबको गिफ्ट दिया जितने थे, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो जब सीता जी ने देखा हनुमान को कुछ नहीं मिला है, तो सीता जी ने अपने गले का जो बहुमूल्य हार था, हीरा मोतियों का, वो उतार के हनुमान को दे दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसमें से एक एक मोती को हार से तोड़कर ऐसे देखता था, फिर उसके बाद दांत से तोड़ता था, फिर देखता था और फेंक देता था। ऐसे लगभग आधा माला तक तोड़ के देख कर फेंक दिया। तो किसी ने पूछा, हनुमान जी क्यों फेंक रहे हो? किसी ने ये भी कहा, बंदर क्या जाने हीरा मोती क्या होता है। तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि ये तो मैं सचमुच नहीं जानता हीरा मोती क्या होता है, लेकिन मैं फेंक इसलिए रहा हूँ कि इसमें देखता हूँ राम जी की मूरत कहाँ है। तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। बहुत सुंदर स्लोगन है। आप जो चीज यूज करो, देखो उसको यूज करने के बाद बाबा की याद आई। अगर बाबा की याद आई तो वो चीज लाखों गुना अच्छी है। अगर बाबा की याद नहीं आ रही है तो वो चाहे सोना ही हो बेकार है, मिट्टी से भी बेकार है। तो चेक करो कि चाहे खाते हैं, चाहे पहनते हैं, कोई भी साधन, मान लो आप नई गाड़ी लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन देखो क्या गाड़ी में बैठने से बाबा की याद आती है या देह अभिमान आता है। अगर बाबा की याद आए तो गाड़ी लेना अहो सौभाग्य है। उस गाड़ी से क्या बाबा की सेवा हो रही है? तो यही दो बात चेक करो कि इससे बाबा की याद आई और इससे बाबा की सेवा हुई। तो आप कुछ भी खाओ पियो स्वतः ही वैराग वृत्ति में रहोगी। तो बेहद की वैराग वृत्ति और उपराम स्थिति अर्थात उपराम का उदाहरण बाबा ने दिया है गुलाब का फूल। उपराम स्थिति अर्थात गुलाब का फूल बन जाना। गुलाब के फूल की तीन विशेषता होती है जो और किसी फूल में नहीं। उन तीन विशेषताओं के कारण गुलाब का फूल श्रेष्ठ माना गया है। पहली विशेषता है गुलाब के फूल की, जब पूरा फूल खिल जाता है पूरा, तो जरा सा ऐसे करो सारे पत्ते झड़ जाते, एक भी पत्ता नहीं बचता है। तो पहली विशेषता कि वो सबसे उपराम है, पत्ता माना उसके संबंधी सबसे उपराम है। और बीच में क्या बचता है? सिर्फ बूर फूल बचता है, वो है आत्मक स्वरूप की स्थिति। तो पहली बात सबसे उपराम, दूसरी बात आत्मक स्थिति में रहने वाला, और तीसरी बात बेहद की वैराग वृत्ति में उपराम स्थिति में। आप लोग किसी भी कहीं गुलाब के फूल में भंवरा बैठता हुआ देखा है? गुलाब के फूल के अंदर भंवरा नहीं बैठता है और फूलों में बैठता है रस लेने के लिए, लेकिन गुलाब में नहीं बैठता। अर्थात वो ना किसी का है ना कोई उसका है, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। जैसे बाबा किसी का भी नहीं है और सभी का है, जो जितना बाबा को प्यार करता बाबा उतना प्यार करता है, जितना बाबा के श्रीमत पर चलता उतनी मदद मिलती। कोई भी बाबा का बच्चा हो सब समान है। दूसरी बात आदि स्वरूप आप लक्ष्मी नारायण के साथ उनके राज घराने में रह सकें, उसकी विधि है आदि स्वरूप के स्थिति का अनुभव करना। उसका आधार है न्यारी स्थिति और गुणधारी वृत्ति। न्यारी स्थिति दिव्य गुणधारी वृत्ति। न्यारी स्थिति अर्थात कमल फूल के समान न्यारा। कमल का फूल बनने का बहुत सुंदर विधि है कमल और अमल। कमल फूल के समान बनने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम को अमल में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। तो फॉलो फादर करो तो कमल के समान बन जाएंगे। तो कमल फूल के समान न्यारी स्थिति और दिव्य गुणधारी वृत्ति, वृत्ति अर्थात वृत्ति कहा ही जाता है, वृत्ति बनती ही है। किसी के बारे में बार बार सोचकर, बार बार बोलकर वो मन में बिठा लेना, ये ऐसा है। फिर वो कुछ भी कर रहा होगा लेकिन आपके मन में जो बैठा है वैसा ही आपको वो दिखाई पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति आपकी कुछ समय पहले शिकायत की थी, आपसे कुछ मन मुटाव हुआ था, वो दूसरे व्यक्ति से भले ज्ञान योग की बात कर रहा हो लेकिन आपके मन में तुरंत आएगा मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति ऐसा भाव बैठ गया है। तो बैठे हुए भाव को वृत्ति कहा जाता है। तो हम आत्माएं दिव्य गुण संपन्न थी, लक्ष्मी नारायण के राज घराने में थी, ये मन के अंदर बार 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 सोचकर बिठाओ कि मैं वही आत्मा हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण के घराने की ही आत्मा हूँ। तो जितना आप उसको सोचेंगे उतना वो आपका स्वरूप बनेगा। और जब आपका गुण संपन्न स्वरूप हो जाएगा तो आप स्वतः ही दूसरे का गुण ही देखेंगे, अवगुण दिखाई ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो जैसा है वैसे दिखता है। उदाहरण के रूप से जैसे बाबा है संपन्न है, सर्व गुणों से सागर है, इसलिए किसी बच्चे का अवगुण नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण के रूप में 3-4 साल पहले की बात है, इसी हाल में अव्यक्त बाबा आया हुआ था और आप लोग जब क्लास में आते हो बाबा के दिन तो आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि दोनों हाथ की ताली नहीं बजाना, ये डायरेक्शन दिया जाता है। तो जब बाबा मुरली चला रहा था तो कोई पॉइंट ऐसी आई जो लोगों ने जोर से ताली बजा दी, तो थोड़ी देर ताली बज के बंद हो गई, फिर बाबा मुरली चलाना शुरू किया, थोड़ी देर में फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ऐसे करके दिखाया एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे करके दिखाया, फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, घमसान हो जाता है, आवाज ठीक नहीं है। फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर ताली बजी। फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, हाथ की ताली नहीं बजाओ। अब आप सोचो, भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है और कोई ना माने तो आपके मन में क्या विचार आएगा, क्या विचार आएगा? यही के कहना क्यों नहीं मानते? जब माँ बाबा मना कर रहा है फिर क्यों नहीं मानते, यही विचार आएगा ना, यही आएगा ना। हम भी बैठे थे, मन में यही विचार हमारे भी आया, क्यों नहीं कहना मानते जब भगवान सन्मुख मना कर रहा है। तो हमारे मन में तो इस तरह का विचार आया, क्योंकि हम में तो कमियां हैं थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान में तो कोई कमी है नहीं। तो भगवान के मन में क्या विचार आया? भगवान कहता है कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है और बच्चों को मना कर रहा है ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। देखो उस बात को किस रूप में लिया। हमारे लिए निगेटिव था और भगवान ने किस रूप से लिया? क्यों? गुणों का सागर है, उसको अवगुण दिखाई नहीं पड़ता। अवगुण में भी गुण। तो जब आप गुण संपन्न होंगे तो गुण ही दिखाई पड़ेगा, किसी का अवगुण दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ये है श्रेष्ठ स्थिति। दूसरा श्रेष्ठ स्थिति बनाने की विधि है, श्रेष्ठ कर्म करके दुआओं का खाता इकट्ठा करना। दुआओं का खाता आपके स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में मदद देता है। जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म का रिजल्ट जो दुआएं मिलेंगी वो आपके स्थिति को महान बनाती जाएंगी। तीसरी बात है कि बाप के आज्ञाकारी बनकर बाप का आशीर्वाद लो। बाप का आशीर्वाद आपके स्थिति को श्रेष्ठ बनाएगा। कैसे? आप देखो, ब्रह्मा बाबा मम्मा या जो दादियां हैं, क्या इनके अपने पुराने संस्कार नहीं थे क्या? क्या इनके पास पुराना हिसाब किताब नहीं था क्या? क्या इनके सामने पेपर नहीं थे क्या? सब कुछ था, फिर भी नंबर वन गया। किस आधार से? हम क्यों नहीं आगे जा पा रहे? अपने पुरुषार्थ को देखो कि जैसे आप पुरुषार्थ करना शुरू करते हो, आपके पुराने हिसाब किताब, पुराने संस्कार सामने आ जाते और रुक जाता है पुरुषार्थ। तो क्या ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं आए, मम्मा के सामने नहीं आए? आए, लेकिन वो विघ्न बाबा को रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि बाप की आशीर्वाद जो विघ्न परिस्थितियां, पुराने संस्कार जो आते हैं, बाप का आशीर्वाद उसको दबा देता है, उछलने नहीं देता है। भगवान की आशीर्वाद साधारण बात नहीं है, उसको दबा देता है। इसलिए बाबा का पुरुषार्थ एक रस चल गया, रुकावट नहीं पड़ी। मम्मा का पुरुषार्थ एक रस चला, रुकावट नहीं पड़ी। कारण बाप का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद लेने की विधि है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बनने का मतलब क्या है? आज्ञाकारी हम आप सब हैं। मुरली भगवान की आज्ञा है, उस आधार से अपने पुरुषार्थ को चलाते हैं। लेकिन हम आज्ञाकारी की लिस्ट में इतना नहीं है जो भगवान से आशीर्वाद मिल जाए। इसका कारण है हम मुरली सुनते हैं आज और पुरुषार्थ करते हैं 3-4 दिन के बाद। क्या इसको आज्ञाकारी कहा जाएगा? सोचो, आपको पानी की प्यास लगी है जोर से और किसी को कहो भैया एक गिलास पानी लाकर दे दो। अगर वो पानी लाकर दे दे तो आपके दिल की दुआ निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। और अगर आपने पानी मांगा और वो पानी लाकर उस समय ना दे, अगले दिन गिलास के बजाय एक बाल्टी पानी लाकर दे दे, तो क्या आप दुआ देंगे? हमारा पुरुषार्थ यही है। जब बाबा कहता है तब नहीं करते और अगले दिन 8 घंटा भट्ठी रख लेंगे। भट्ठी करना गलत नहीं है, लेकिन जब बाबा ने कहा जो आप मुरली सुनते हो, मुरली से रोज 1 पॉइंट ले लो कि आज मुझे ये धारण करना है, सिर्फ 1 पॉइंट, और उस 1 पॉइंट पर सारा दिन अटेंशन रखो। अगर आप किसी 1 पॉइंट पर अटेंशन रखा 8 घंटा 10 घंटा, तो वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में 1 पॉइंट आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। संपन्न बनने में देरी लगेगी, लेकिन हम भगवान के आज्ञाकारी बनते नहीं, इसलिए भगवान की आशीर्वाद नहीं मिल रही है। इसलिए आत्मा श्रेष्ठ स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रही। तो आज से ये पक्का कर लेना, मुरली सुनते सुनते 1 पॉइंट ले लेना, उस पर अभ्यास करना, ठीक है। चौथी बात है, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़कर बाबा से शक्ति लेकर आत्मा को उस पॉइंट का स्वरूप बना देना। एक है आत्मा अपने स्वरूप का चिंतन करके स्थिति बनाए, एक बाबा की मदद के साथ अपनी स्थिति बनाए। जब बाबा की याद के साथ, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, एक आप अपने इस स्वरूप का बार 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 अभ्यास करके शांति की स्थिति बनाना। एक है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बाबा शांति का सागर है, बाबा से शांति की किरणें आ रही, मैं आत्मा आत्मा शांत स्वरूप बनती जा रही। अब इस स्थिति से, इस विधि से अभ्यास करो तो जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, ईंटें रखते हो तो बीच में सीमेंट लगाकर जोड़ते हो तो पक्का हो जाता है। अगर सीमेंट ना लगाएं, ईंटें रख दो तो गिर जाएगा। तो बाप की याद माना सीमेंट पक्का कर देगी, उसका स्वरूप बना देगी। इसलिए बाप की याद के साथ अपने गुणों को इमर्ज करो तो श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। ठीक है। और पांचवी बात क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? ड्रामा पर एक्यूरेट खड़ा रहना, ड्रामा पर एक्यूरेट खड़ा रहना। लेकिन ब्राह्मणों का ड्रामा लगता नहीं है, लगाते हैं लेकिन लगता नहीं। कारण इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ड्रामा लगाने की छोटी छोटी बातों पर भी हम प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे योग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, ऐसे ड्रामा लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उदाहरण के रूप से मान लो आज आपका कुछ पैसा गायब हो गया, मान लो। अब पैसा गायब हो गया ढूंढना जरूरी बात है, लेकिन उसके पीछे परेशान हो जाना ये ठीक नहीं। वहां ड्रामा लगा के देखो, कल पहले गया था अब भी गया। इसका मतलब नहीं कि ढूंढना नहीं है, पुरुषार्थ सब करना है, लेकिन मन की स्थिति एक रस रहे। जब अभी से आप छोटी छोटी बातों पर ड्रामा लगा सकते हो, संकल्पों को कंट्रोल कर सकते हो, तब बड़ी बात आने पर, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई दुर्घटना हुई, बड़ी बात आ जाए तब आपका वहां ड्रामा लग पाएगा। तो पहली बार ड्रामा लगाने का अभ्यास करो। दूसरी बात, ड्रामा आपका तब लगेगा जब तीन बातें एक साथ सोचोगे। तब ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट। इन तीनों बातों को एक साथ लेकर सोचो तब आपका ड्रामा लगेगा, पॉइंट लगेगी। न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट, फिर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इन पांच बातों के आधार से आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब स्थिति श्रेष्ठ बन गई तो फिर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। अब परिस्थितियां कितने प्रकार की आती है, परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, कितने प्रकार के सामने आते। अनुभवी तो सब हैं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसके सामने ना आता हो। पांच प्रकार की परिस्थिति है। श्रेष्ठ स्थिति से पांचों प्रकार की परिस्थितियों से पार किया जा सकता है, और जो इन पर विजय प्राप्त कर ली वही विजय माला में आएगा। पहली बात है सो स्थिति के विपरीत जो हो वो पर स्थिति है। सो और पर, सो माना आत्मा, आत्मा के सामने सबसे पहले परिस्थिति इस शरीर के द्वारा आती है। कर्म भोग बीमारी भोगती आत्मा है, लेकिन आता इसके द्वारा है। या जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस समय सारे खाते चुकतू हो रहे होते हैं। उस समय आत्मा पास विद आनर हो जाए, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते रहते इस शरीर को छोड़ दे, वो अभ्यास की आवश्यकता है। किस प्रकार से होगा इस शरीर रूपी परिस्थिति से पार करने की विधि। अपना ब्रह्मा बाबा था, जब शरीर छोड़ा तब की कैसे बाबा की श्रेष्ठ स्थिति थी जो इस शरीर पर विजय प्राप्त की, परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। संदेशी ने बाबा से पूछा था कि बाबा हमने बाहर का रूप तो देखा, दादी के हाथ में हाथ था, दृष्टि थी आदि, लेकिन आपकी आंतरिक स्थिति क्या थी वो बताओ। तो बाबा ने कहा कि जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी तो एक साथ तीन बातें चल रही थी। एक तो बाबा ने कहा कि देखा कि आत्मा मस्तक से निकलकर धीरे धीरे शरीर के पैर के अंगूठे तक गई, फिर उसके बाद वहां से आत्मा रिटर्न हुई। तो जैसे जैसे आत्मा ऊपर आती गई, शरीर ठंडा होता गया और अंत में आत्मा यहां से आकर निकल गई। एक सीन ये था। दूसरी बाबा ने कहा कि उस समय ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? बाबा आप कितने मीठे हो, आप मुझे अपने पास बुला रहे हो, आप मुझको आप समान बना लिया, वाह बाबा आपका कितना उपकार मेरे ऊपर है, हम आपके पास आ रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहा था। और तीसरा सीन था, बाबा ने कहा उस समय कर्म भोग फुल फोर्स पे था, अर्थात दर्द फुल फोर्स पे था, लेकिन कर्म भोग फुल फोर्स पे होते हुए बाबा की अपनी श्रेष्ठ स्थिति दर्द को भोगा नहीं, लेकिन दर्द को भोगवाया। किस रूप से? आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दुख स्वरूप आत्मा की स्थिति नहीं है। तो बाबा का बहुत समय का अभ्यास शरीर से डिटैच होने का और इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बाबा को उस समय विजयी बना दिया। दर्द भोगा नहीं, लेकिन साक्षी हो करके देखा जैसे दर्द किसी और को हो रहा है। मैं आत्मा तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इस स्थिति में बाबा स्थित रहा, लेकिन इसके लिए बहुत समय का ये अभ्यास चाहिए, निरंतर रहने का, तब अंत में विजयी बनेंगे। तो एक पेपर ये है, दूसरा पेपर है आत्मा के सामने अपने पुराने संस्कारों का। जैसे पुरुषार्थ बढ़ाती है, संस्कार विघन डालते। तीसरा पेपर है लौकिक या अलौकिक परिवार के द्वारा पेपर, लौकिक परिवार के द्वारा और अलौकिक परिवार के द्वारा। और चौथा पेपर है किसी किसी को इबिल सोल के द्वारा पेपर, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है अंत में पांच पांच इबिल सोल एक के अंदर प्रवेश करेंगी, जिसका हिसाब किताब है सब में नहीं, प्रवेश करके अपना हिसाब लेंगे। और पांचवा पेपर है प्रकृति के द्वारा पेपर, प्रकृति के द्वारा पेपर। तो ये पांचों प्रकार का पेपर अगर श्रेष्ठ स्थिति है तो श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर एक एक पर विजय बड़े आसानी से मिल जाएगी, जो बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। सब जानते भी हैं, सिर्फ स्थिति श्रेष्ठ हो तो विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके पास विद आनर बनकर घर चलना है। अच्छा, ओम शांति।